आज हम प्रेरित 17 अध्याय में हैं और उसमें आगे बढ़ेंगे, पर आप आज सियोन चर्च में बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी है सियोन चर्च में बैठे हुए, तो 2 घंटे की आराधना है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आशीष दे। पिछली बार हमने 16 अध्याय को प्रेरित उसके 16 अध्याय को देखा था और 16 अध्याय में 3 परिवर्तन थे और तीनों परिवर्तन में किस प्रकार से सुसमाचार प्रभुता रहा है। प्रेरित काम की बात यह है कि पूरी पुस्तक में सुसमाचार प्रभुता कर रहा है, कलीसिया में लोगों के जीवन में सुसमाचार की प्रभुता होनी चाहिए और यह सच्ची बात है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो प्रेरित काम की पुस्तक में हमें निरंतर, और जब सुसमाचार प्रचार होता है तो सुसमाचार का विरोध भी होता है, सुसमाचार का विरोध भी होता है, लेकिन सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकता, सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकता। और तब हमने 3 मन परिवर्तन, किस प्रकार से लुदिया का परिवर्तन हुआ, वहां पर फिलिपी कलीसिया की आरंभ हो गई, किस प्रकार ये एक स्त्री है जो लोगों के लिए पैसा कमाती है, उसके अंदर भ्रमित करने वाली आत्मा है, पर कैसे परमेश्वर ने के लोगों ने उसको चंगाई दी और वो प्रभु को महिमा मिली, लेकिन उसी के कारण लोग किस प्रकार से विद्रोह में हुए और उनको बंदीगृह में डाल दिया गया, पौलुस को और सिलास को, लेकिन कैसे अद्भुत रीति परमेश्वर ने उसके द्वारा बंदीगृह में भी परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए उपयोग करा। हम कहीं भी रहते हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता है तो परमेश्वर हमें अपने महिमा के लिए उपयोग करता है। आज हम 17 अध्याय में पढ़ते हैं, उस दिन में 17 अध्याय में थोड़ी सी बातों को मैंने शेयर किया था, क्या हुआ, अब यहाँ पर फिलिपी नगर में इनका विरोध हो रहा है। तब जब विरोध हुआ तो ये लोग वहाँ से आगे निकल गए और तब हम 17 अध्याय में जब हम आते हैं तो 17 अध्याय में पहले पद से लेकर के 9 पद तक थिस्सलुनीके में कलीसिया आरंभ होती है, उसका वर्णन है। हमने 4 पद देखा था पिछली बार, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे। और तब उसके बाद 10 पद से लेकर 15 तक हम बीरिया की कलीसिया के बारे में पाते हैं। अब बीरिया में सुसमाचार पहुंच गया, बीरिया के लोग विश्वास करने लगे, किस समय कलीसिया स्थापित हुई नहीं मालूम, लेकिन बीरिया के विश्वासियों के बारे में वर्णन है। फिर 16 पद से लेकर 34 पद तक एथेंस में हम देखते हैं। एथेंस बहुत ही प्रसिद्ध नगर था जो यूनान का था, जो मैं बार बार बोलता हूँ जो माराथन है वो एथेंस से ही आरंभ हुई है, माराथन एथेंस से, आगे चल के मैं उसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। ये 3 मुख्य घटनाओं को देखते हैं या 3 मुख्य स्थानों को देखते हैं। तो जब थिस्सलुनीके में कलीसिया आरंभ होती है, हम देखिए किस प्रकार से वो यहाँ से थिस्सलुनीके में आकर के परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पर पहले पद से लेकर 4 पद तक, पिछली बार ध्यान दिया था, 3 शब्द तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा। ये पौलुस की विधि थी या पौलुस की रीति थी, ये पौलुस का तरीका था, पौलुस का बोझ था, पौलुस का दर्शन था। कहीं भी जाता था वो अवसर को ढूंढता था और अधिकतर नगरों में ये यहूदियों के छोटे छोटे आराधनालय बने थे। मुख्य जो आराधनालय था या मंदिर था वो यरूशलेम में था, जहां लोग साल में एक बार आया करते थे, जहां जलसा मनाया जाता था। लेकिन यहां पर जब भी किसी उस शहर में आते थे, वहां यहूदियों के छोटे छोटे स्थान रहते थे और हर एक जन उसमें प्रवेश नहीं करता था, कर पाता था, लेकिन वही प्रवेश करता था जो यहूदी पृष्ठभूमि से होता था या इन्होंने यहूदी मत को स्वीकार करा हो, यूती रीति विधियों को स्वीकार किया हो, और जैसे मैं पहले बता रहा था जिनका खतना हुआ हो वे वहां जाते थे। पर पौलुस जब भी मौका मिलता था, क्योंकि पौलुस यहूदी पृष्ठभूमि से है, ज्ञानवान है, सब कुछ है, लोग उसको जानते हैं, प्रसिद्ध था, और इसलिए वो आराधनालय में जानता था और कई बार लोग उसका स्वागत करते थे और उससे कुछ ना कुछ सुनना सीखना चाहते थे, और इसलिए आराधनालय में उसको ये अवसर मिलता था। पर जब भी उसको आराधनालय में अवसर मिलता था, वो हमेशा सुसमाचार प्रचार करता था, वो हमेशा यीशु के बारे में प्रचार करता था, और वही लोगों के लिए एक द्वंद और संघर्ष का कारण बन जाता था। और जैसे हम पिछली बार देख रहे थे, तो वो यहाँ पर वो कहता है, इस बात कह रहा है 3 पद में कि प्रमाणित करता, वो क्या कह रहा है, इस बात का अर्थ स्पष्ट करके ये प्रमाणित करता रहा, ये प्रमाणित कर रहा है, क्या प्रमाणित कर रहा है, कि यीशु मसीह को दुख उठाना अनिवार्य है। 2 चीज, पहली चीज यीशु मसीह का दुख उठाना अनिवार्य है, फिर दूसरी चीज उसका मृतकों में से जी उठना अनिवार्य है। कहता दुख उठाना और मृतकों में से जीव उठना आवश्यक है, और ये बार बार उस बात को जाकर लोगों के सामने बोलता था, किसी जहां कहीं भी उसको ये अवसर मिलता था। और क्या कह रहा है उसके बाद, यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूं मसीह है। पिछली बार मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि ये लोग मसीह शब्द से बहुत ही यहूदी लोग छिड़ते थे। वो कह रहा जिसका मैं प्रचार करता हूं वो मसीह है, मैंने उस यीशु मसीह को जाना है। वो तो यहूदी व्यवस्था को पूरा जानता था, व्यवस्था को पूरा करता था, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसको मैंने जाना है, वो मेरे और संसार के पापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, और ये अवश्य था कि वो यीशु नासरी मेरे और आपके लिए दुख उठाए, मारा जाए, अपने आप को बलिदान करे, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और अवश्य किसी का लहू बहाया जाना था, और वो लहू बहाया जाना केवल मनुष्य के लहू के द्वारा मनुष्य छुटकारा था, पशु के लहू के द्वारा मनुष्य का छुटकारा नहीं हो सकता। लोग पशु का बलिदान करते थे, आज भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन आज कई सारे तरीके बन गए मंदिरों में। अगर प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है तो इसलिए प्रसाद चढ़ाया जाता है क्योंकि अब वहां उस तरह के बलिदान नहीं चढ़ाए जाते, पहले प्रसाद की विधि नहीं थी। लेकिन जब बलिदान खत्म हुए तो बलिदान का स्थान इन प्रसादों ने ले लिया जो आज लोग चढ़ाते हैं। लेकिन है वो ये कि कोई ना कोई चढ़ावा करना है जिस चढ़ावा के द्वारा हमें मुक्ति मिल जाए या हमारे पाप धुल जाए या हमें पाप से छुटकारा मिल जाए। और इसलिए ना तो पशु का चढ़ावा, ना किसी वस्तु का चढ़ावा, ना किसी और व्यक्ति का चढ़ावा मनुष्य के पापों से छुटकारा दे सकता था। केवल यीशु मसीह जो निष्पाप होकर इस संसार में आए, निष्पाप थे, निष्पाप रहे, और कुंवारी मरियम से जिन्होंने जन्म लिया, और इसलिए बलिदान के बिना मनुष्य का छुटकारा नहीं हो सकता था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, मनुष्य के लिए कीमत चुकानी पड़ी, और मनुष्य के छुटकारे के लिए मनुष्य का लहू बहाया गया। इतना नहीं था, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। अगर वो जी ना उठा होता तो मृत्यु उससे ज्यादा बलवान होती। इसीलिए पहला क्रंथी उसका 15वां अध्याय उसका 53 पद और उसके 55 पद में क्या लिखा हुआ है, मृत्यु को विजय ने निकल लिया। अर्थात कौन विजय? यीशु मसीह जो विजय है, वो विजय जो मृत्यु में से जुटा। तब वो कहता है, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। ये सच है, मनुष्य के जीवन का अंत सबसे बढ़कर मृत्यु पाया है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, क्या मसीह विश्वास में इस प्रश्न का उत्तर है? संसार में इसका उत्तर नहीं है। संसार में मृत्यु के बाद क्या होगा? बाइबल इस बात का उत्तर देती है कि मृत्यु के बाद जीवन है, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, वो यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हो सका है। धर्म कर्म के द्वारा नहीं, रीति विधियों द्वारा नहीं, व्यवस्था का पूरा करने द्वारा नहीं, किसी और चीज के द्वारा नहीं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, और वो व्यक्ति विशेष प्रभु यीशु मसीह है, जिस व्यक्ति के सामने, जिस प्रभु के सामने एक दिन हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है। और पौलुस कहता है मृत्यु को विजय ने निकल लिया, अर्थात उस विजय ने, यीशु विजय है, उसने मृत्यु को निकल लिया है। मृत्यु उसके पांव के नीचे पहुंच चुकी है, कुचल चुका है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, इसलिए जो को उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा, अर्थात उनके लिए भी जीवन ठहरा दिया गया है, वे भी मृत्यु में से जी उठेंगे। शरीर तो मट्टी है, मट्टी मिल जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा ये शरीर नया शरीर लेकर के प्रभु यीशु मसीह में होकर के वो जी उठेगा। और इसलिए मृत्यु एक विश्वासी के लिए अंत नहीं है, मृत्यु विश्वासी के लिए अंत नहीं है, लेकिन विश्वासी का अंत प्रभु यीशु मसीह का राज है, हम उसके लिए धन्यवाद हैं। और ये मसीह है, और लिखा हुआ है कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, यूनानियों के समूह भक्त मिल गए, कुलीन प्रमुख स्त्रियों ने भी विश्वास किया। ये स्त्रियां अधिकतर यूनानी पृष्ठभूमि में थी जो बहुत ज्ञानवान थी, बहुत ही, और उनका कई सारे इस नगर के निर्माण में या व्यापार में बहुत ज्यादा योगदान था, जैसे हम उस स्त्री को भी देखते हैं। तो ये जो जिन स्थानों के बारे में हम सुसमाचार देख रहे हैं और कलीसिया स्थापित हो जा रही है, ये अगर इनका हम अध्ययन करें तो इन सारे नगरों का एक विशेष महत्व है। अगर आज के लिए आज की दृष्टि में देखा जाए तो छोटे नगरों के समान नहीं है, लेकिन ये प्रसिद्ध है, ये इनके अंदर धन संपन्नता भरी हुई है, ज्ञान बढ़ा हुआ है, बहुत सारे इसमें विद्वान लोग पाए जाते हैं और ये सब कुछ है। और पौलुस ने ऐसी जगह जाकर के सुसमाचार का प्रचार किया है और लोग मिल गए। लेकिन 5 पद से लेकर के 9 पद तक क्या हुआ? प्रतिउत्तर प्रतिक्रिया। पहले लोगों का प्रतिउत्तर है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया क्या है? कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी यही होता है सुसमाचार का। कुछ लोग प्रतिउत्तर सकारात्मक देते हैं, विश्वास करते हैं, कुछ लोग नकारात्मक प्रतिउत्तर देते हैं, प्रतिक्रिया होती है। क्या हुआ? लिखा, परंतु यहूदी ईर्ष्या से जल उठे। ये जल उठने का जो स्वभाव है ना मनुष्य के अंदर, बहुत बुरा भयंकर पाता है। और उन्होंने बाजार से कुछ दुष्टों को अपने साथ लिया। आप देख लीजिए, बाजार से कुछ दुष्टों, जो खाली दुष्ट बलवा मचाने का काम करते हैं, उनको साथ लिया और अपने साथ लेकर और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाया और यासोन के घर में चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। अब देखिए, ये आज भी यही होता है। आप गांव में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, दो एक जन विरोध में हुए, उनके अंदर जलन उत्पन्न हुई, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जिनका काम बलवाई मचाना है, और वो लोग इकट्ठा होकर के फिर क्या करते हैं? फिर बवाल मचाते हैं, विरोध करते हैं। सुसमाचार का विरोध उस समय भी वैसी था और आज भी वैसे ही है, आज भी वैसे ही। ये मत जानिए कि केवल भारत में ही, विदेशों में भी जो लोग सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते वो खिल्ली उड़ाते हैं। कोई व्यक्ति खड़ा होकर प्रचार करता है, एक जगह एक बार मैं था बाहर और एक व्यक्ति प्रचार करता, कोई भी उसको सुनने तैयार नहीं, कोई भी सुनने तैयार नहीं है। लोग ऐसे, पूरा संसार एक ही स्वभाव से बचा हुआ है, बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ? अब यासोन का परिवार, जिसके बारे में आगे भी देखते हैं, परंतु बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस और सिलास वहां नहीं मिले, क्योंकि लोगों ने क्या करा, वहां से धीरे से उनको वहां से निकाल दिया और वो बीरिया चले गए, यासोन के घर से चुपके से निकाल दिया। और कई बार पौलुस और सिलास को इन विश्वासियों ने बचाया, उस स्थान से निकाला है। यह सच है, जब हम बाराबंकी गए और बाराबंकी में हम निकलीसिया की आरंभ करें तो पता चला एक बार कुछ लोग मेरे को आके घेरने लगे और किसी ने बताया एकदम से ऐसा लगा कि एक गाड़ी में 3 जन आए और उनके वस्त्र देख कर लगे कि ये विशेष समूह के हैं। और तब मुझे किसी ने कहा कि अंकल आप यहाँ से चले जाइए, आज यहाँ पर बलवा होने वाला है। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं वहाँ से चला गया और किसी विश्वासी के घर में रहा। करीब रात 9:30 बजे तक मुझे विश्वासी के घर में रहना पड़ा और ये लोग आ करके 5 बजे से लेकर 9 बजे तक करीब लगभग मेरी इंतजार करते रहे। और काफ़ी बड़े वहाँ पर एक दूसरा विश्वासी भाई आ गया, उन्होंने उसको घेर लिया, उससे बात किया, लेकिन विशेष थे वो मेरे से विद्रोह करने आए थे, पर प्रभु ने उस दिन बचा लिया। और फिर 9:30 बजे वो विश्वासी भाई मुझे धीरे से छोड़कर आया। भाई राजकुमार भी उस समय वहाँ थे, उनको भी मालूम है। सो ऐसे कई सारे ऐसे अवसर हुए हैं जिसको हमने अपने अनुभव में पाया है कि जब प्रभु के लोगों ने हमें बचाया है कई जगह ऐसे समय। सो वही अनुभव हम देखते हैं। तो यहाँ पर इस रीति से हम देख रहे हैं क्या हुआ, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब क्या होता है, ये लोग, मैं इस स्थल से आगे बढ़ना चाहूँगा, 10 पद से लेकर के 15 पद तक हम इस पर थोड़ा ठहरना चाहेंगे। 10 पद से लेकर 15 पद तक। अब ये स्थान जो बीरिया का स्थान है, बीरिया नगर है, बीरिया नगर में किस प्रकार से परमेश्वर का वचन पहुंचा है, विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, ये सब कुछ हुआ। अब इसके बाद, क्योंकि क्या कह रहे थे, ये विद्रोह करके क्या कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा 7 पद में, 17 अध्याय के 7 पद में वो ये कह रहे थे कि ये जो विद्रोह है ना, केवल कि यीशु नाम का कोई राजा, यीशु नाम का कोई राजा, अरे यीशु नाम का कोई अन्य राजा हो सकता है? विरोध करके कह रहे थे यीशु नाम का कोई अन्य राजा है। और उन्होंने भीड़ को, उस नगर के अधिकारियों को जिन्होंने ये सब सुना था, भड़का दिया, और कोई राजा नहीं हो सकता, कैसर के अलावा कोई और दूसरा राजा नहीं होता, जो वहां पर उस समय शासक थे, चाहे कैसर था, चाहे पिलातुस था, चाहे और थे, उनके अलावा कोई हेरोदेस थे, हेरोदेस के अलावा कोई और राजा नहीं उसका, ये यीशु राजा कौन सा है? और इन्होंने इसको बहकला दिया। लेकिन क्या हुआ, जब थिस्सलुनीके में उपद्रव हो रहा था तो रात में गुप्त रीति से पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया गया, 10 पद से लेकर के 15 पद तक। भाइयों ने तुरंत रात में ही पौलुस तथा सिलास को बीरिया भेज दिया, जहां पहुंचने पर वे यहूदियों के आराधनालय में गए। अब उनका यही स्वभाव था, कहीं भी आप जाइए, पौलुस इस विरोध के कारण चुपचाप से नहीं बैठ गए, अरे हम मार दिए जाएंगे, हमें ये कर दिया जाएगा, हम क्या करें, अपने आप को बचा लें, नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक ही झील उनके अंदर थी कि यीशु का सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार हर जगह पहुंचे। अब वहां पर गए, अब जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर ये कुछ बात को देखकर बहुत ही अधिक आनंदित हो गए। क्या बहुत बात को देखा, लिखा हुआ है कि बीरिया की कलीसिया ये लोग थिस्सलुनीके वालों से अधिक सज्जन थे। थिस्सलुनीके से पहले थिस्सलुनीके, उन्होंने थिस्सलुनीके की कलीसिया को भी देखा, उनके विश्वासी को भी देखा, 3 हफ्ते वहां पर रहकर उन्होंने वचन की सेवा की, उनको सिखाना चाहा। लेकिन जब यहां पर आए तो लोग तो ऑलरेडी विश्वास में है, ऑलरेडी परमेश्वर को जब वचन को सुने, लेकिन उनके अंदर क्या है, लिखा हुआ क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में वे खोजबीन करते रहे कि देखें ये बातें ऐसी हैं या नहीं। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, ये कलीसिया परमेश्वर के वचन को सीखने, सुनने, पढ़ने और वचन को जानने की इच्छा रखने वाली कलीसिया थी। ये विश्वासी लोग ऐसे विश्वासी थे जो परमेश्वर के वचन का आदर करते थे। एक सच्चे विश्वासी के जीवन की पहचान, एक सच्चे विश्वासी के जीवन की, सुन लीजिएगा ध्यान से, एक सच्चे, अगर आप कहते हैं कि आप विश्वासी हैं, आप कहते हैं आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, आप कहते हैं आपने बपतिस्मा लिया है, आप कहते हैं हमारी कलीसिया में हम जुड़ गए हैं, अगर कहते हैं, तो एक सच्चे विश्वासी की पहचान उसका जीवन परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित होगा। ये विश्वासियों के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बीरिया की कलीसिया एक विश्वासी के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस 11 पद में 3 मुख्य बातों को हम देखते हैं, इस 11 पद में, जो मेरे प्रियो एक विश्वासियों के लिए है। प्रश्न यह है, आज मैं और आप यदि अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का जीवन पाया जाता है? कितना अधिक मैं और आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? लिखा हुआ है पहली बात, वो परमेश्वर के वचन के प्रति खुले हुए थे, उनका हृदय, उनका मस्तिष्क, उनका इच्छाएं परमेश्वर के वचन के लिए खुले थे। 11 पद में लिखा हुआ है ये लोग थिस्सलुनीके वाले सज्जन थे क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया था। कितना उत्सुकता से कलीसिया में आना, बाइबल अध्ययन में आना या व्यक्तिगत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, इनके लिए बोझ नहीं था, भार नहीं था, मजबूरी नहीं थी। अरे अगर नहीं जाएंगे तो फोन आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा, अरे ऐसा होगा, अरे काम बहुत है, नहीं, इनके अंदर उत्सुकता थी। कितना अधिक हम जाने, कैसे हम जाने, कैसे हम सीखें? मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर परमेश्वर के वचन की तपाई आती है? आप ऑफिस जाते हैं, आपको घर से 7:30 बजे निकलना पड़ता है, आपका रूटीन क्या है? प्रभु का धन्यवाद हो, मैं प्रभु को किस भय में आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अपना उदाहरण, इसलिए नहीं कि मैं आपसे बहुत बड़ा हूं या विशेष हूं, पर परमेश्वर ने मेरे पर दया की थी, परमेश्वर ने मेरे पर अनुग्रह किया था, मुझे आरंभ से परमेश्वर ने वचन के लिए भूख दी थी। और जब मैं HL में काम करता था उस समय ने प्रभु को पाया था, और मेरी शिफ्ट ड्यूटीज होती थी 6 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक, रात 10 बजे से लेकर पूरी रात नाइट शिफ्ट 6 बजे तक, ये शिफ्ट ड्यूटी चलती थी, और हर 15 दिन में ड्यूटी शिफ्ट ड्यूटी चेंज होती थी, ये मेरा ड्यूटी था। लेकिन जब सुबह की ड्यूटी होती थी, मुझे 6 बजे जाना होता था, पहुंचना होता था, मुझे घर से 5:30 निकलना था, लेकिन मेरा रूटीन था 4 बजे मैं उठता था, प्रभु ने आदत डाल दी थी, नहाता था, नहाने धोने के बाद 40 से 45-50 मिनट बैठ करके मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था। आज भी वो नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं, उस समय जो मैंने अध्ययन किए डायरियों में भरे पड़े, और परमेश्वर ने उस समय से सुखाना सुखाना। मेरे साथ 4 भाई और रहते थे, वो गवाह हैं, उनमें से कुछ भाई आज भी बोलते हैं कि हमने रॉली के जीवन को, भाई रॉली के जीवन को देखा है। वो लोग सोते थे लेकिन मैं अपने परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था, और डायरी लेके, बाइबल लेके, पेन लेकर के लिखता था, सीखता था। बाइबल सेमिनार में नहीं गया लेकिन वहीं से प्रभु ने सीखने की इच्छा डाली। मैं बाइबल सेमिनार के विरोध में नहीं, तो इच्छा थी कहीं बाइबल कॉलेज में जाऊं, कुछ करूं, लेकिन नहीं हो पाया परमेश्वर के। लेकिन वो दिन और आज भी मेरा वो जीवन बना है। प्रश्न यह है, आपके जीवन में क्या है? आप बहुत व्यस्त हैं, कार्य में व्यस्त हैं, पैसे की चिंता रहती है, सब कुछ की चिंता रहती है, लेकिन क्या परमेश्वर के वचन की चिंता है, क्या ये इच्छुक है? अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, मेरे प्रियो ये सच है, आपके जीवन में परमेश्वर का जैसा काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कभी हो सकता है बीमारी में, कभी परेशानी में, कभी व्यस्त, कभी हो सकता है, लेकिन अगर 80% आपका दिन बिना वचन के शुरू होता है, 20% वैसे जाता है, या तो गलत है, लेकिन अगर 80% 90% आप वचन से शुरू करते हैं, 10% कभी टूटल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की प्राथमिकता परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, ये वचन के प्रति ये सच में वो पूरी नहीं थे, इनका हृदय परिवर्तित था, इनका मन परिवर्तित था, इनके जीवन में आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत थी। और इसीलिए आप कितने साल हो जाते हैं आप आत्मिक रीति से नहीं बढ़ने पाते, आप आत्मिक निर्णय नहीं दिखाई देते आपके जीवन में। आप सोचते तो आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपके जीवन के निर्णय वो आत्मिक नहीं दिखाई देते। मेरे प्रियो, एक आत्मिक जीवन आत्मिक रीति से निर्णय लेता है और वचन पर आधारित निर्णय लेता है, वचन उसके सामने आता है, ये आपको मानना चाहिए। तो यहाँ पर पहली चीज थी वो परमेश्वर के वचन के लिए खुले थे। क्या आपका जीवन, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी चाह परमेश्वर के वचन के लिए खुला है? दूसरा, वे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए इच्छुक थे। लिखा हुआ है प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में खोजबीन करते थे, प्रतिदिन, 6 महीने में एक बार नहीं, 1 महीने में एक बार नहीं, साल में 2 बार नहीं, प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रभु यीशु मसीह के लिखा है यशा 50 में उसके 4 में, वो प्रति भोर को मुझे उठाता है, प्रति भोर को मुझे उठाता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यशा 50 अध्याय 4 पद प्रभु यीशु मसीह के लिए वह भविष्यवाणी है। और इसे लूकास को वर्णन करता है कि प्रति भोर को परमेश्वर के पास जाता था। आपका प्रति भोर कैसे आरंभ होता है मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, किस रीति से आप आरंभ करते हैं? ये आपको भूख क्यों रहती है? कुछ ना कुछ खराबी रहती है, तब आप क्या करते हैं? कोई टॉनिक लेते हैं, दवाई देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे भूख नहीं लग रही, कई दिन से खाना अच्छा लगा, भूख नहीं लग रही, बच्चा भूख नहीं लगी। अगर भूख नहीं लगी तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बढ़ेंगे नहीं, आपकी बढ़ोतरी नहीं है। जब हमारे शरीर में भूख नहीं लगती तो हम चिंता कर लगते हैं, लेकिन जब आपको वचन की भूख नहीं लगती आप चिंता करते हैं। क्या परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु मेरे हृदय को संभालिए, मेरे जीव को संभालिए, अपने वचन के लिए भूख उत्पन्न करिए, या प्रभु के सेवक के पास जाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन नहीं होता, ऐसा है, भूख नहीं है या इच्छा नहीं है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। आप उनकी काउंसलिंग को, उनकी सम्मति को स्वीकार करिए, सुनिए नहीं स्वीकार करिए। कितने लोग सम्मति को सुन लेते हैं लेकिन उसको पालन नहीं करते, और नहीं पालन करके अपनी हानि उठाते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने किसी को बहुत कुछ सम्मति दी, लेकिन जब उसने नहीं माना, अपनी मन मर्जी करी, हमने देखा उसका रिजल्ट क्या हुआ, बाद में उसको परेशान देखा। मेरे पे आपको समझना है, सम्मति जब दी जाती है उसको प्रेम के साथ, हाँ वो व्यक्ति को जो सम्मति दे रहा अपने स्वार्थ के नहीं लेकिन वचन के आधार पर सम्मति देनी है, तब उसको करना है। ये लिखा है मेरे प्रिय बहानेबाजी, तो अगर आपके अंदर व्यस्तता है, बहानेबाजी है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, आपने प्राथमिकता वचन को नहीं ठहराई, इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए इच्छुकता नहीं है, भूख नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के लिए बहुत अधिक इच्छुक थे, रात दिन खोजते थे, वो खोजबीन करते थे। तीसरी बात, वो स्वयं वचन ने लिखा हुआ खोजबीन करते थे और देखते थे ये बातें ऐसी हैं या नहीं, ये बातें ऐसी हैं या नहीं, अर्थात वचन को परखते थे, वचन को परखते थे। जब आपने वचन सुना, बाहर जाकर घर जाकर के बातचीत करी, कितना अच्छा हो कि पति पत्नी साथ बैठ करके, बच्चों के साथ बैठ करके बातचीत करें कि ठीक है आज हमने वचन को क्या सीखा, या हमने वचन में, अभी हम लोगों ने बंद किया, लेकिन जब खुल जब हमारे साथ रहता है तो हम संडे की सर्विस रिव्यू करते हैं, उस सर्विस रिव्यू में वचन के बारे में बातचीत करते हैं, और तब हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं क्या अपने पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने मित्र के साथ, किसी साथ वचन के बारे में बात करा, बहुत ज़रूरी है। क्या बातचीत करें, क्या चीज़ है, या अगर कोई संदेह उस वचन में आकर पूछे, खोज बने, जो कहा गया है कि पास्टर साहब या अंकल या ब्रदर जो कुछ भी है, भाई आपने जो वचन शेयर करा क्या ये सही है, आपने ऐसे कैसे, क्या ये वचन के अनुसार है, या आपने अपनी खोपड़ी तो नहीं लगा दी इसमें, मेरे प्रिय बहुत सारे, और तब आपको समझना है, तब आपको जानना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से ही सिद्धांतों को निकालते हैं, लेकिन कई पदों को छोड़ करके कुछ पद को लेकर सिद्धांत बना के खड़ा कर देते हैं और लोग उसके पीछे भाग जाते हैं। और हमें सावधान रहना है, जितनी शिक्षाएं आरंभ होती हैं बाइबल से होती हैं, लेकिन हमें परखना है क्या वो सही है, कहाँ तक है, कैसे है, इस चीज़ को जानना है। और इसलिए वे स्वयं को खोज देते हैं। मेरे प्रिय, जो शिक्षा दी गई, दाऊद कहता है क्या ये धन्य है वो जो रात दिन व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, ध्यान करता है, उस पर चलता है। भजन संहिता 1:1-2 होशे कहता है, होशे उसके 6:3 में, आओ हम यहोवा को खोजें और उसके उसके ज्ञान को खोजने के लिए यत्न करें। आओ हम यहोवा का ज्ञान खोजें और उसको खोजने के लिए यत्न करें। प्रकाशवा के 1:3 में लिखा है, योना प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसका पालन करते हैं, वे धन्य है। आपके अंदर परमेश्वर के वचन की प्रतिक्रिया है, कितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं। वो कह रहा है यहाँ पर कि वो देखे कि परमेश्वर के वचन में कि ऐसा ही नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वो भोजन है जिस भोजन से मेरा आत्मिक और आपका जीवन बढ़ सकता है। कई बार हम लोगों से बात करते हैं, जवान बच्चों से बात करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, नहीं, आप संदेश सुनते हैं, नहीं, इंटरनेट नहीं है, तो ये है, तो व्यवस्था है, तो काम है, तो ऐसा कुछ ना कुछ बहाना। ये बहाने हैं। आपके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए ना तो इच्छा है, ना आपके अंदर परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता है। इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। किसी दिन होगा, लेकिन अब ठंडा होता चला जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो जा, गुनगुना बन के मत रहे, नामधारी विश्वासी बन के मत रहिए। नामधारी बोलते ना, नामधारी मसीह, अब नामधारी विश्वासी भी हो गए। हमने विश्वास कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम नामधारी, हमारे जीवन में परमेश्वर वचन की रुचि नहीं है, हम बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल की पुस्तकों के दाम तक नहीं मालूम। एक व्यक्ति जो एक बच्चा, एक जवान, अगर सच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने विश्वास किया, बचाया गया है, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा और प्रेम होने के कारण परमेश्वर के वचन को स्थान देगा। अभी पिछले दिनों में हमारे नाती पोते वो आ गए, इसीलिए मैंने क्या नाम से जोशु से पूछा, मैंने जोशु तुम बाइबल पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे। क्या पढ़े आज तुमने, क्या पढ़ा? ये हमारा फर्ज है, मैं उनको सिखाने का, उनको प्रोत्साहित करने का, मैंने उनसे पूछा। और मेरे प्रियो, हमें बच्चों को सिखाना है, अगर हम ना पढ़ेंगे तो बच्चों कैसे सिखाएंगे? आप अपने घर में कितना अधिक परमेश्वर के वचन को स्थान देते हैं और कितना अधिक अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने उनको सिखाते हैं, बातचीत करते, पूछते हैं? मेरे प्रियो, ये परिवार में होना है। अगर ये आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं होगा, आपके परिवार में नहीं आएगा, आपके परिवार में नहीं आएगा, आपका परिवार नहीं बढ़ेगा। हमें बहुत गंभीर होना है। परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में लोगों का परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के वचन के प्रति ठंडा होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। मेरे प्रियो, वचन के प्रति प्रेम को ठंडा ना होने दीजिए। आज विचार कीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा लेकिन इसी बात को दोहराऊंगा मैं, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का क्या स्थान है? कितना अधिक इन दिनों में आपने, क्या जब कोरोना में आप घर में थे, आपने बाइबल को और अधिक पढ़ा है? कितना अधिक आपने कोई आत्मिक किताबों को पढ़ा है? कितना अधिक आपने बाइबल के पदों को याद कर लिया है? कितना अधिक आपने बच्चों के साथ बैठ के परमेश्वर के वचन को बांटा है? अगर आप नहीं करने पाए, ये समय आपने गंवाया है। और बाइबल कहती है समय को बहुमूल्य जानिए। यूट्यूब पे वचन सुनना अच्छी बात है, ये सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हाथ में रख करके इसको दिल तक पहुंचाना ये और जरूरी है। आपके अंदर हृदय में, मस्तिष्क में इसकी वचन की प्रभुता होनी है, ये वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में दोषी ठहराने वाला और तुम्हारा न्याय करने वाला एक है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह के मुख के द्वारा निकला है। परमेश्वर ने यह वचन अपनी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा मैं लिख करके मेरे और आपके हाथों तक पहुंचाया है, ताकि मैं और आप इस परमेश्वर के वचन का सम्मान कर सकें। परमेश्वर के सामने आपकी व्यवस्था कोई बहाना नहीं करने पाएंगे। बहुत सारे कार्यों को हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करते, वचन को नहीं जानते। अभी पिछले दिनों मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, किसी ने कह दिया अरे हमें कलीसिया में कुछ नहीं करने की जरूरत है, अरे कलीसिया में ही आसर है। आपका कर्तव्य क्या है? आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते इसलिए आप अपने धार्मिक बने, ये गलत है। ये आपको, आप परमेश्वर सामने जो भी है, क्योंकि आपने वचन को नहीं जाना है। हमें किस प्रकार से, हम लोगों का आदर नहीं करते लेकिन परमेश्वर का आदर करते हैं, और परमेश्वर में होकर लोगों का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन में होकर के। हमें लोगों का सम्मान परमेश्वर के वचन में होकर करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इन दिनों में आपने इन दिनों में वचन को स्थान नहीं दिया, मेरे प्रियो परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछेगा अगर मेरी और आपकी आंख बंद हो जाएगी, क्योंकि ये वचन उसने अपने सम्मान के लिए दिया है। इस वचन के लिए तो उसने अपना प्राण दिया है, यही तो उसने हमें पहुंचाया है। मुझे और आपको संसार में कौन बचा सकता है, पाप से कौन बचा सकता है? जब मुझे, मैं परेशान होता हूं, मुझे कौन साहस देता है? परमेश्वर का वचन। जब मैं निराश होता हूं, कौन मुझे आशा देता है? परमेश्वर का वचन। जब मुझे मार्गदर्शन चाहिए होता है, कौन देता है? परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, अगर रात में आपकी आंख खुलती है, आप निराशा में, परेशान में, आप परमेश्वर के वचन को खोलिए, भजन संहिता पढ़िए। आपके अंदर बीमारी आती है, आप एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, दो हफ्ते बिस्तर में पड़े हैं, कितना अधिक आपने परमेश्वर का वचन पढ़ लिया। मैंने अपने जीवन के बारे में बार बार आपसे शेयर करा, जब 2017 में बेल पाल्सी का अटैक मुझे हुआ, उसी रात बैठकर मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, और परमेश्वर ने अय्यूब उसके 5 अध्याय से, वो आज भी मैसेज यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, उससे परमेश्वर ने मुझसे बातें की। मैंने रात में परमेश्वर के सामने आंसू के साथ परमेश्वर से प्रार्थना मांगी अपने, और मैं प्रभु धन्यवाद हूँ, 1 महीने में उसने उठकर खड़ा कर दिया, और 1 महीने बाद मैं परमेश्वर के वचन की सेवा कर सका। और वही अय्यूब 5 जो परमेश्वर ने सिखाया था मुझे, मुझसे बात की थी, वो मैंने 12 बंकी में भी और यहाँ पर भी विश्वास साथ शेयर किया। परमेश्वर के वचन से हम अलग नहीं होते, एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, उसको खाइए, उसको अपने जीवन बसाइए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है, मैंने तेरे अपने वचन को अपने हृदय में बसा रखा है ताकि मैं कोई भी पाप ना करने पाऊं। कितना जज्बा बढ़ा हुआ है। और मेरे पे जब यहोशू आगे बढ़ता, परमेश्वर ने मूसा साफ कहलाया था, और ये परमेश्वर ने स्वयं उससे कहा था, यहोशू यदि तू परमेश्वर की व्यवस्था को, वचन को मानेगा, उसका या सम्मान करेगा, उसका पालन करेगा, तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। आशीष केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, आपके पास बहुत बड़ा मकान बन गया, बहुत बड़ा रोटी मिल गई, चाह खूब चिकने चिकने पदार्थ आप खाते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, सब कुछ है, वो आशीष नहीं है। आशीष ये है कि आपके बच्चे, आपका परिवार प्रभु में बन जाए, आप आत्मिक रीति से बढ़ जाएं। अगर एक भी परिवार का जन इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बेकार हो जाएगा। काश इस बीरिया की कलीसिया के समान मेरा और आपका जीवन हो। बीरिया की कलीसिया की दशा थी, और लिखा है मेरे, तब आगे चल के कहता है, अतः उनमें से बहुतों ने तथा उनके साथ अनेक प्रतिष्ठित यूनानी महिलाओं और पुरुषों ने विश्वास किया। बहुतों ने विश्वास किया, अंडरलाइन कर लिए। और कैसे बहुतों ने, प्रतिष्ठित प्रसिद्ध थी, और यूनानी महिलाएं जैसे मैंने बताया था आपको, पुरुषों ने विश्वास किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पर अब थोड़ी देर बाद थिस्सलुनीके से कुछ लाए, थिस्सलुनीके की खबर मिली, ये वहां से करीब 15 से 16 मील के अंतर में था, ये थिस्सलुनीके से ये नगर, जैसे यहां से 12 बंकी और थोड़ा सा और आगे, जैसे उनको मिला, अरे ये बीरिया में पहुंचे हैं, अब बीरिया में इन्होंने करना शुरू हुआ, वहां से कुछ लोग चले आए, दौड़े दौड़े आ गए। लिखा हुआ है वहां पर कुछ लोग आ गए, सुनाए तो वे आकर भीड़ को भड़काने और उल्लन मचाने लगे। तब भाइयों ने पौलुस को तुरंत समुद्र तट पर जाने के लिए विदा किया, परंतु सिलास और तिमोथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले एथेन तक उससे ले गए, और उससे ये आदेश पाकर कि सिलास और तिमोथियुस जल्द से जल्द मेरे पास आ जाएं, वे वहां से विदा हुआ। अब उसके बाद वो एथेंस में जाता है। किस रीति से, कैसे वो एक से एक आगे जाए, एथेंस के बाद वो कुरिन्थ में जाता है, वहां पर भी ये स्थिति आती है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, आने वाले संडे में प्रभु चाह तो हम एथेन पर विचार करेंगे। लेकिन बीरिया की कलीसिया मुख्य विषय परमेश्वर का वचन। क्या परमेश्वर के वचन पर आपने विश्वास किया है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा है। वचन, मसीह का वचन। क्या आपने सच में मसीह के वचन पर विश्वास किया? अगर मसीह के वचन में विश्वास किया है तो वचन आपके जीवन में कैसा स्थान रखता है? मैं हमेशा वो कोटेशन कोट करता हूं जो मूडी ने कहा, या तो परमेश्वर का वचन तुमको पाप से अलग रखेगा या पाप तुमको परमेश्वर के वचन से अलग रखेगा। पाप चाहे आपकी अनिच्छा हो, आलस हो, व्यस्तता हो, काम हो, कुछ और चीज हो, कोई भी चीज जो पाप के जीवन में आपको नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल कर रही है, वो आपको वचन से अलग रखेगी, या वचन आपको इन सारी चीजों से अलग रखेगा। निर्णय आपके जीवन में है, चुनाव के जीवन है। क्या आज आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में परमेश्वर आपके वचन के प्रति वो स्थान नहीं रहा। इन छुट्टियों में भी मैं और अधिक आपके वचन को पढ़ सकता था। अभी पिछले दिनों में प्रभु ने मुझे, हम लोगों को मौका दिया कि हम भूटान में जाएं। हमारे साथ एक भाई भी थे और वो भाई जब हमारे साथ रहे, उन्होंने वहाँ पर रहकर 3-4 दिन खूब बाइबल को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, भाई चंद्रशेखर। और तब उन्होंने कहा कि अंकल मैंने ये इन दिनों में पढ़ लिया। और जब भी मैं उनके कमरे को जानता था, वो बैठकर बाइबल पढ़ते थे, उन्होंने पूरा समय का फायदा उठाया। ये वचन के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए। मैं इन भाइयों को कहता हूँ यहाँ पर कि आपको 1-2 घंटे बाइबल को पढ़ना सीखना है। अगर ये आपने सीख लिया तो धीरे धीरे आप पर वचन बढ़ जाएंगे, अन्यथा नहीं। ट्रेनिंग जरूर है, प्रशिक्षण जरूर है, लेकिन अपने आप में आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्या परमेश्वर के वचन से आप प्रेम करते हैं? क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित है? क्या परमेश्वर के वचन के प्रति भूखे हैं? अगर नहीं तो आज पश्चाताप करें, क्षमा मांगें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु कब कहें, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके वचन से प्रेम नहीं किया। मुझे क्षमा मांगिए, मैंने आपके वचन का आदर नहीं किया। क्षमा मांगिए, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में नहीं बसाया। क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए, मैंने आपके वचन का सम्मान ना पढ़ने के द्वारा, ना सुनने के द्वारा और ना पालन करने के द्वारा किया। मुझे क्षमा करें। और आप प्रभु से मांगें, प्रभु यह अनुग्रह करें कि उसका वचन आपके हृदय में प्रभुता करें और आप वचन के साथ जीवन को व्यतीत कर सकें। आइए हम प्रार्थना।